29 जून शनिवार बीबीसी इंडिया बोल, मैं हूं आदर्श राठौर। एक देश एक चुनाव पर बंटी है राजनीतिक दलों की राय। प्रधानमंत्री कहते हैं समय और पैसे की होगी बचत। विपक्षी दल इसे मानते हैं अव्यवहारिक कदम। आप क्या सोचते हैं? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। राजस्थान के अलवर में अप्रैल 2017 को भीड़ की हिंसा का शिकार हुए पहलू खान के दो बेटों के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस घटना में पहलू खान की मौत हो गई थी जबकि उनके बेटे और अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस की चार्जशीट को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें मृत पहलू खान का भी नाम है, लेकिन अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख ने बीबीसी को बताया है कि चार्जशीट में पहलू खान का नाम शामिल नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि फिलहाल के लिए अमरीका चीन आयात पर नए कर नहीं लगाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अपने व्यापारिक मतभेद सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। जापान में G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बात कही। ट्रंप ने चीनी आयात पर 300 अरब डॉलर के नए कर लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन अधिक अमरीकी कृषि उत्पाद खरीदेगा। हालांकि चीन की तरफ से बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां चीनी मोबाइल कंपनी ख्वावे को सामान बेचना जारी रख सकती हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं सामान की बात कर रहा हूं, उसके साथ राष्ट्रीय आपातकाल की समस्या नहीं है। अमरीकी कंपनियां अपने सामान बेच सकती हैं, इसलिए हमारे पास सिलिकॉन वैली में कई बड़ी कंपनियां हैं और देश के कई हिस्सों में जो बेहद जटिल उपकरण बनाती हैं, हम उन्हें ख्वावे को सामान बेचने दे रहे हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका देश अमरीका के साथ संबंध सुधारने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। जापान में G20 सम्मेलन की समाप्ति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे बीच ऐसी आपसी समझ है जिसके कारण हम इस स्थिति से बाहर निकल आएंगे। हमारे ब्रिटेन के सहयोगी के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। परिस्थितियां असामान्य हैं और कैसे भी इसे हमें सुधारना चाहिए। हमें खुद में ही मजबूती ढूंढनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तर कोरिया ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनके शीर्ष नेता किम जोंग उन अमरीकी राष्ट्रपति से मिलेंगे या नहीं। दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि वो किम जोंग उन से सीमा पर मिलने की उम्मीद करते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो सीमा के पार जाना चाहते हैं, जो उनको अमरीका का ऐसा पहला राष्ट्रपति बना देगा जो उत्तर कोरिया की जमीन पर गया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि यह प्रस्ताव काफी अच्छा है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है। तालिबान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में एक हमला किया है जिसमें कम से कम 28 सरकार समर्थित मिलिशिया सिपाहियों की मौत हो गई है। उनका कहना है कि 3 मिलिशिया चेकपॉइंट को निशाना बनाया गया था। जिस जगह हमला हुआ उस नहरीन जिले के गवर्नर का कहना है कि दोनों ओर से घंटों तक गोलीबारी होती रही। उनका कहना है कि चरमपंथियों ने हथियार और सैन्य उपकरणों को कब्जे में ले लिया था। ये हमला उस समय हुआ जब दोहा में अमेरिका और तालिबान के वार्ताकारों के बीच 7वें चरण की बातचीत चल रही है। तालिबान ने अफगान सरकार से अभी भी बातचीत करने के लिए इनकार कर दिया है क्योंकि वो उसे अवैध मानती है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं आदर्श राठौर। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं लाइव। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 1811 7000 और 1811 7001 पर आप मुफ्त फोन करके अपने विचार रख सकते हैं। स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। विषय है एक देश एक चुनाव, जिस पर राजनीतिक दलों की राय बंटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऐसा करने से समय और पैसे की बचत होगी, लेकिन विपक्षी दल मानते हैं कि ये कदम अव्यावहारिक है, उनकी अपनी चिंताएं हैं। इससे पहले कि श्रोताओं की राय को कार्यक्रम में शामिल करें, रामकृपाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है इस फैसले को लेकर, इस पहल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से, वो ये है कि समय और पैसे की बचत होगी।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, समय और पैसे की बचत होगी, लेकिन विपक्ष की आशंकाएं भी निर्मूल नहीं हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जो सबको संतुष्ट कर सके और 100% हो। देखिए, 28% गोल्ड से जेवर नहीं बनता है। तो मेरा लोकतंत्र में क्या होता है कि बैठ करके मिल करके जो सबसे मुफीद हो, 100% भी ना हो, 75% भी जो हो, तो कम से कम अगर 30% या 40% को कोई ऐसी व्यवस्था है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसकी जगह पे अगर हम विमर्श तो करें। बात लोकतंत्र में देखिए बातचीत होनी चाहिए, आउटराइटली रिजेक्ट कर देना भी उतना उचित नहीं है जितना ये कह देना कि नहीं ये व्यवस्था फुल प्रूफ होगी। तो लोकतंत्र में यह होता है कि लगा इस पर विमर्श होना चाहिए और निश्चित तौर पर उन शंकाओं को निर्मूल करने की भरसक कोशिश की जानी चाहिए। और मैं पूरा विश्वास है कि आज की जो मौजूदा व्यवस्था है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं यह है कि बहुत सारा सिर्फ धन का ही आप वही नहीं है, जो सबसे बड़ा संकट है किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है
जी,
पहला साल उसका जो जाता है ये सब समझने में और तैयारी करने में, आखिरी साल जो होता है वो नई चुनाव की तैयारी करने में पॉपुलिस्ट मेजर उठाने पड़ते हैं, कुल मिला के किसी भी सरकार के लिए मुश्किल से 3 साल या 2.5 साल उसको काम करने का मौका मिलता है। उसमें अगर साल भर 5 साल में 10 चुनाव हुए और हर चुनाव में 45 दिनों की आचार संहिता लागू होती है जिसमें आप किसी भी तरह का कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप टोटल जोड़ लें उस 2.5 साल 3 साल में से निकाल दें तो इफेक्टिव क्या होता है, 1.5 और 2 साल सरकारों का काम करने पड़ता है जो 5 साल की सरकारें हैं। तो हम लोग एक जीवंत लोकतंत्र हैं, लगातार विकास हमारे लिए सबसे बड़ा पैमाना है, दुनिया तेजी से बदल रही है, इसमें हम ये जो कार्य दिवस है ना इनकी हत्या होते नहीं देख सकते।
बिल्कुल, इसको इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। हम अपने श्रोताओं की राय कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं जी। अपना नाम बताएं और आपका क्या कहना है इस विषय पर, क्या लगता है आपको जी? अपना नाम बताएं, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक और श्रोता हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताएं और बताएं कि एक देश एक चुनाव पर क्या सोचते हैं आप।
हेलो सर
जी,
मेरा नाम पिंटू सिंह है, यूपी राय बरेली से, गांव का नाम पूरे तहसील तिलोई
जी। पिंटू,
पहले तो हम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, आपकी प्रोडक्शन कंपनी जो इतना बढ़िया सा ये चला रहे हैं, हम इसकी जितनी बड़ाई करें उतने कम है।
शुक्रिया पिंटू, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखें जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि
जो बहुत बढ़िया बात आपने बताई है, एक राष्ट्र एक साथ, जो पैसा की बचत है और समय की बचत है, बिल्कुल सही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात उठाया है, और हम जो आप राठौर जी और जो आपके बैठे हुए उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करेंगे सर जी।
हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं जी, अपना नाम बताएं और आपका क्या सोचना है एक देश एक चुनाव पर।
सर हमारा नाम आशुतोष सिंह है, हम चंदौली उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर
जी। आशुतोष,
प्रधानमंत्री जी मैक्सिमम चुनाव प्रचार करते रहते हैं, इस वजह से उनको लग रहा है कि चुनाव प्रचार में पैसा और समय बर्बाद होगा, उनको तो केवल चुनाव प्रचार ही करना है, जैसे ही इसका चुनाव एक खत्म होगा दूसरे स्टेट में कूद जाएंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है मेरे विचार से, तो एकदम संभव। हम सर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और हम लगभग डेली आपका न्यूज सुनते हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि ये संभव नहीं है, फिर भी वैसी जिनकी सोच है। धन्यवाद सर।
जी चलिए, आपने शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताएं और एक देश एक चुनाव पर क्या है आपकी राय वो भी रखें जी।
हाँ, मेरा राय है आपसे कि एक चुनाव एक देश में एक ही चुनाव एक बार में होना चाहिए, और अगर किसी की अल्पमत में सरकार गिर जाए तो 5 साल तक राष्ट्रपति वहाँ शासन होना चाहिए और सारा काम होना चाहिए राष्ट्रपति के निगरानी में।
लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको लगता नहीं कि ये लोकतंत्र है जब सरकार चुनी जा रही है, अगर नहीं बन पा रही तो जैसे कि आज दोबारा चुनाव होते हैं?
नहीं नहीं, बीच में अल्पमत में गिर जाएगी सरकार, हो जाती है उतार चढ़ाव इधर उधर होते हैं, तो वो सरकार 5 साल बाद ही चुनाव होगी, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा।
चलिए शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए रामकृपाल जी। ये एक विपक्ष की भी चिंता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी और आप राष्ट्रपति शासन ही जारी रखेंगे वहाँ पे, जब चुनाव आप चाहेंगे कि जब सब चुनाव हो रहे हैं तब होंगे, तब एक जो एक शून्य सा बन जाएगा, उसको कैसे टैकल करना है?
जो बात हो रही है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि देखिए, जो लोग देश के जिन्होंने संविधान बनाया है, आफ्टर ऑल वो जनप्रतिनिधि ही थे ना, आज भी हैं, और जो मौजूदा देखिए जो नई नई चिंताएं उभरती हैं, जो नई चुनौतियां आती हैं, उनके लिए नए ढंग से सोचा जाता है। जब कोई भी एक व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर उसमें ये कहीं ना कहीं से इस संकट को उबरने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक चुनाव कर दिया और जितनी सारी शंकाएँ हैं, वो 356 धारा है, या सरकारों को भंग करना है, या सरकारें ये जैसे होता है दल बदल है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन सब चीज़ों पर एक लंबी वो चर्चा हो। सवाल इस बात का है कि एक इस पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए, और ये काफ़ी समय से है, ऐसा नहीं कि मोदी जी कह रहे हैं, बहुत लोगों को गलतफहमी है, आडवाणी जी ने ये बात कही थी, इसके पहले भी ये बात हो चुकी है, बहुत ज़माने से ये बात हो रही है कि कैसे ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पर धन का बाकी चीज़ों का समय की बचत हो। तो मेरा ये कहना है कि इस पर एक बहस चले, कमेटी बने, सब पार्टियाँ मिल के बैठें, और आफ्टर ऑल अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन विमर्श की गुंजाइश तो रखिए ना, चुनौतियों से निपटने का आप मुश्किलें हैं लेकिन हौसला भी होना चाहिए।
जी बिल्कुल, हमारे साथ तो कुछ और श्रोता जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जी?
हेलो
जी, अपना नाम बताएं और बताएं एक देश एक चुनाव पर क्या कहना है आपका?
मैं अनिल जोगियाल रांची चौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
जी अनिल,
पहले आपको प्रणाम।
जी
डॉक्टर, मेरा ये कहना है कि मोदी जी की एक पहल तो स्वागत है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और दिल्ली में 2019 में चुनाव होने हैं, ये कैसे संभव हो सकता? फिर अगर किसी भी विधानसभा में हंग असेंबली आती है, सरकार गिर जाती है, तो फिर कैसे संभव हो सकता सर सभी एक चुनाव सभी?
जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताएं और क्या कहना है आपका इस विषय पर?
हेलो
जी,
मैं सर गुजरात से बोल रहा हूँ।
जी अपना नाम बताएं।
मैं जामनगर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम डीके परमार है सर।
जी परमार जी, क्या कहना है आपका?
50 वर्ष से आपको सुनता हूँ
जी, शुक्रिया।
सरकार ये वन नेशन वन इलेक्शन में सफल नहीं हो सकती सर, क्योंकि हमारा भौगोलिक परिस्थिति जुदा जुदा है राज्य की, एक राज्य में बारिश होगी दूसरे राज्य में क्या होगी, हमें वीआईपी कल्चर नाबूद करना चाहिए सर, वीआईपी कल्चर में हमारा पैसा बहुत खर्च हो जाता है, राज्य का और केंद्र का इलेक्शन इन दोनों में वोटरों का नजरिया अलग अलग होता है। हमारे गुजरात राज्य में 2 सीट है राज्यसभा की, इसमें भी 2 चुनाव कर लगे तैयार हो रहे हैं सब, वीआईपी कल्चर पेंशन एमपी का ज्यादा है, हमारे गरीब राष्ट्र है, खर्चा बचाने का रास्ता कहना है जी हमारे पास सर।
जी बहुत शुक्रिया आपकी राय कार्यक्रम में शामिल हुई। तो रामकृपाल जी, जैसे इन्होंने कहा कि गुजरात में भी 2 राज्यसभा की सीटों पे अलग अलग चुनाव कराने की बात हो रही है, और फिर बात ये भी आती है कि जब आप खर्च बचाने की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव हुए, कई सारे चरणों में हुए, एक राज्य में ही कई चरणों में हुए, क्योंकि उस हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी को मूव करना, तो जब 2 चुनाव होंगे या साथ में कोई और चुनाव जो आप मान लीजिए कुछ और बॉडीज़ के भी अगर आप उसके साथ सम्मिलित करते हैं, तो EVMs चाहिए होंगी, सिक्योरिटी चाहिए होगी, तो ये बहुत प्रेशर आएगा।
देखिए, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने कहा ये बात, जो अभी तमाम श्रोताओं के बटी हुई प्रतिक्रिया आप देख ही रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी लोकतंत्र में, एक अलग अलग विचार आते हैं। मेरा ये कहना है कि आज की व्यवस्था, सब लोग यही इस देश का हर वोटर ये मानता है कि कहीं ना कहीं से चुनाव सुधारों की ज़रूरत है, और चुनाव सुधार, ये चुनाव आयोग भी इस बात को कह चुका है कि चुनाव सुधार की बहुत ज़रूरत है। और जब उसमें एक साथ चुनाव कराने की बात होगी तो बहुत सारे जो शंकाएं हैं इनका भी जब तक समाधान नहीं खोजा जाएगा, और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि ये कहीं और नहीं हो रहा है, बहुत जगह हो भी रहा है ये। और मैं अपने देश की बात बताऊं आपको, जो ये बार बार होता है कि एक डर है कि क्षेत्रीय दल, ज़्यादातर देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियाँ, उनका क्या होगा। मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, राजीव गांधी जब 400 सीट लेकर के आए थे, चुनाव हुआ था करीब करीब, वो बिल्कुल 84 का आखिर और 85 की शुरुआत मान लीजिए, एक तरह से कहिए कि 85 की शुरुआत में प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने कर्नाटक से की जनता ने सारी सीटें उनको करीब करीब सौंप दी थी, वहाँ से मतलब पूरे 400 से ऊपर सीटें लेकर के आए थे। राजीव गांधी ने कर्नाटक की विधानसभा को भंग कर दिया और तुरंत चुनाव कराए गए। उसी जनता ने जिसने दिल्ली के लिए राजीव गांधी को वोट दिया था, उसी जनता ने अपने प्रदेश के लिए रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को चुना
जी।
वो रामकृष्ण हेगड़े 18 मार्च को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी 1985 को। तो आप ऐसा नहीं है, अभी आज का चुनाव देख लीजिए, अभी जो फिलहाल अभी भी हुए हैं, जहां आप देखिए उड़ीसा में, आप कह नहीं सकते हैं, आप कहेंगे इतना पिछड़ा राज्य है, तमाम तरह की वहाँ समस्याएँ हैं, लेकिन वहाँ की जनता कितनी परिपक्व है कि अपने राज्य के लिए उसने फिर नवीन पटनायक जी को चुना, और दिल्ली के लिए वहाँ के काफ़ी लोगों ने मेजॉरिटी में मोदी जी को वोट दिया है। तो आप सोचिए कि 85 और 84 यानी आज से 35 साल पहले, करीब करीब 35 साल पहले, ये वोटर इतना जागरूक है, उसे पता है एक साथ होना। तो ये जो आशंकाएं होती हैं कि एक साथ होगा तो वोटर को इतना नहीं पता है कि कहीं वो भावुक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा अतीत में भी नहीं था, आज भी है। हाँ, जो ये आशंकाएँ हैं कि कहीं खरीद फरोख्त, दल बदल, इन सब चीज़ों के लिए तो एक पूरी की पूरी चुनाव सुधार के आईने में इस पर एक बहस होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए। अगर कोई संभव है कोई विकल्प, तो कोई भी बात बुरी नहीं होती है। देश हित में उन्होंने ये बात कही है, और देश हित में ऐसा नहीं मोदी जी कह रहे हैं, बहुत सारे यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने, नेताओं ने ये बात उठाया है कि इस पर हमें विचार करना चाहिए।
जी, जो श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। चर्चा हो रही है एक देश एक चुनाव को लेकर। श्रोताओं को बता दें कि पिछले साल जब लॉ कमीशन ने इस मसले पर राजनीतिक पार्टियों से सलाह मांगी थी, तब समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। हालांकि जो तृणमूल कांग्रेस है, सीपीआई और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने विरोध किया था। और अब जब प्रधानमंत्री ने इस मामले पर बैठक बुलाई थी, तो जो गैर एनडीए दल की जो अधिकतर पार्टियां हैं, उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं रही थी। तो जैसा कि आप बात कर रहे थे कि इस पे जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा इनिशिएट अभी हो नहीं पा रही है। चलिए कुछ श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। जी,
मैं पढ़ी हूँ और मैं प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस।
जी,
तो मेरा मानना है कि ये जो बहस हो रही है, ये ऐसे अच्छी नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए कि एक ये आती है, एक सरकार आती है चुन के
जी।
और वो एक साल रहती है और उसके बाद ये सरकार गिर जाती है, तो क्या होगा? उसके बाद जो पार्टी सेंटर में है वो तो वर्चुअली रूल करेगा ना उस स्टेट को, तो क्या होगा?
अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक साल के अंदर कहीं पे किसी राज्य में सरकार गिर जाती है, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है जी, ये जो व्यवस्था है उसे रहने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग सहमत होंगे या नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये जो 5 साल ये बहुत लंबी होती है। आप 4 साल कर दीजिए, कोई बात नहीं, उसके बाद इलेक्शन होगी और 4 साल के लिए चुने जाएंगे, जैसे कि अमेरिका में हो रही है। क्योंकि हम तो ऐसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के आज भी उसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 5 साल होती है, हम 5 साल करते हैं, क्यों नहीं हम 4 साल करेंगे और आप चुनाव एक साल, एक चुनाव एक देश कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव जो ये अवधि है उसे घटा लीजिए।
जी शुक्रिया, आप शुक्रिया जी, आपकी बात हमारे कार्यक्रम में शामिल होगी। कुछ और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, समय की कमी है, उनको हम शामिल करना चाहेंगे। जी अपना नाम बताएं और संक्षेप में अपनी बात रखें। जी
हेलो,
जी
मैं योगेश भोटे एनटीपीसी भरूच गुजरात से बोल रहा हूँ।
जी योगेश जी,
हाँ मेरा ये कहना है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात है वो व्यवहार्य नहीं लग रही, क्योंकि इसमें अगर मानिए कि सभी विधानसभा में स्पष्ट बहुमत में आ गया 5 साल के लिए, अगर इनकेस मानिए कि लोकसभा में अगर बहुमत नहीं आया और वहां भी गठबंधन की सरकार अगर 2 साल के या 1 साल में गिर गई जैसे वाजपेयी जी के समय में हुआ था, तो लोकसभा के लिए क्या किया जाएगा। हेलो
जी, जी जी आपकी बात हम सुन रहे हैं।
हाँ तो लोकसभा के लिए इसका मतलब इसके लिए अगर लागू करना है तो इसके लिए एक ही विकल्प है कि अगर विधानसभा 1 या 2 साल के अंदर में सरकार बना नहीं पाती, गिर जाती है पहले ही, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन 3 साल बचे हुए 3 साल के लिए लगाना पड़ेगा। और वही बात है कि अगर केंद्र में अगर लोकसभा अच्छा काम अपना पूरा समय नहीं ले पाई 5 साल के अंदर में, वो अगर वहाँ सरकार गिर गई और अगर कोई वैकल्पिक सरकार भी नहीं बना पाया, तो वहाँ भी राष्ट्रपति शासन बचे हुए 3 या 4 साल जो भी हैं उसके लगाना पड़ेगा। और ये व्यवस्था अगर करनी है तभी लागू हो सकता है, वरना मेरे ख्याल से तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव करना संभव नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। कुछ और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
नमस्कार सर, मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ।
जी देवेंद्र जी।
जी सर, मैं सर मेरा तो यही मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग ही होने चाहिए, क्योंकि अगर ये एक साथ हो गए तो भी हमें जो हमने तानाशाही देखी है या राजशाही देखी है उसका ही कुछ रूप हमें दिखाई देगा फिर, क्योंकि सरकार को पूरा अधिकार मिल जाएगा कि 5 साल तक बेखौफ वो कुछ भी करे।
जी जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरह की अलग अलग हमारे जो श्रोता है उनकी चिंताएं थी, तो इससे एक तरह से ये भी लग रहा है कि अगर सरकार इस तरह की पहल कर रही है तो उसका क्या सोचना है इन विषयों पर, कि इसको लेके अभी स्पष्टता जो है वो सार्वजनिक हुई नहीं है।
उसका एक है चीज़ है कि कोई एक ड्राफ्ट पॉलिसी, कोई एक मॉडल, जैसे देखिए अभी सब लोग इस बात को क्या मान रहे हैं जो स्वाभाविक है कि ये तो हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ये आशंका है। लेकिन अगर कल को मान लीजिए कि एक ऐसी व्यवस्था आती है कि जो राज्य के विधानसभाओं में जो चुने हुए विधायक हैं, कोई भी सरकार तब तक नहीं गिर सकती है जब तक कि वैकल्पिक कोई सरकार उन्हीं विधायकों द्वारा एक मॉडल नहीं आए, तब तक न प्रेसिडेंट रूल लागू होगा न वो सरकार गिरेगी, तब क्या होगा। तो बेसिक बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि है उसके अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। अगर ये चीज़ें सुनिश्चित हों तो क्यों नहीं हो सकता। मैं बताऊं आपको कि सरकारें गिराने का केंद्र का भी अधिकार कम हो जाएगा, सरकारें नहीं गिरेंगी और ये आया राम गया राम जो दल बदल होकर के रोज चले जाते हैं, जब तक आप एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं लाएंगे उन्हें प्रतिनिधियों द्वारा नहीं होता, तब तक जो भी सरकार वहाँ है वो काम करेगी
जी।
तो कल को ये कर लेंगे तो जैसे मैं एक बात उदाहरण दे रहा हूँ कि ये भी एक सुझाव है उसमें, तो इस पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी बन एक नीति हो जाए और फिर वो एक प्रारूप जाए जनता के बीच, तब उस पर बहस होगी। अभी स्वाभाविक यह है कि चूंकि कोई एक सिर्फ एक लाइन कह रहा है दोनों एक साथ चुनाव हो, तो इस तरह की आशंकाएं उठना एक स्वाभाविक है, क्योंकि देश में जो होता रहा है अतीत में भी आप देखिए सरकारों को कैसे कैसे भंग किया गया, बिना किसी कारण के भंग किया गया, 356 का इतना दुरुपयोग किया गया, ये सब अतीत में हो चुका है
जी।
तो एक शंका स्वाभाविक है, आशंकाएं स्वाभाविक हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में बहस अनिवार्य हिस्सा होती है, असहमत का अधिकार भी होता है, लोकतंत्र की डिफिनेशन यही है, रूल ऑफ मेजोरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी। तो आपका ये बहस जनता के बीच जाए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि इस समय हैं चाहे वो विधानसभा के हों लोकसभा के हों, एक्सपर्ट कमेटी बैठे और कुछ गाइडलाइंस एक मॉडल जनता के सामने ले जाया जाए कि इस पर आप अपनी राय व्यक्त कीजिए।
जी। चलिए कुछ और श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी राय भी शामिल कर लेते हैं। जी अपना नाम बताएं, एक देश एक चुनाव पर क्या सोचना है आपका वो भी बताएं। जी
नमस्कार।
जी नमस्कार।
जी हम खिड़किया बरगिया तहसीलपुर जिला पीलीभीत से सुरेश बोल रहे हैं।
जी सुरेंद्र जी, क्या क्या कहना है आपका इस पे?
जी हम 2003 से आप बीबीसी सुन रहे हैं, आज पहली बार फोन लगाया, बहुत खुशी हो रही है हमें
जी। शुक्रिया
जी। हमारा कहना है जी कि ये अलग अलग ही हो तो सही है, क्योंकि एक बार होना संभव नहीं है, और फिर जहाँ एक बार दोबारा चुनाव आने का संभव नहीं, जैसे नौबत आ गई तो 5 साल तक फिर राष्ट्रपति शासन ही लगा रहेगा, तो हो नहीं पाएगा, इसलिए वो अलग अलग ही सही है
जी। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो रामकृपाल जी, वही जो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो चिंताएं हैं लोगों की वो उठ रही हैं। चलिए कुछ और श्रोता हैं हमारे साथ जी।
हेलो
जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
हाँ सर, मैं सर से
जी जी। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, हम चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो श्रोताओं को बता दें कि एक देश एक चुनाव को लेकर जो बहस देश में शुरू हुई है उस पर हम बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप 1811-7000 और 1800-102-7001 पर मुफ्त फोन करके अपने विचार रख सकते हैं। स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से अभी बैठक बुलाई थी प्रधानमंत्री ने, उसमें जो विपक्षी दल हैं उनका दिलचस्पी न दिखाना, क्या कहीं ना कहीं ये उनकी सरकार की तरफ से भी कमी रही कि उनको पूरी तरह विश्वास में नहीं ले पाए कि भई हम शुरू से इसको शुरू तो करें किसी तरह से?
देखिए, एक अभी ऐसा लग रहा है, अभी शुरुआत है, कई बार ये होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि विमर्श लोकतंत्र में अनिवार्य है और होगा ही। और ये देखिए, एक होता है पब्लिक पोस्चरिंग, अभी अभी नतीजे आए हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, कुछ लोग जो बिल्कुल अप्रत्याशित जिनके लिए है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन मेरा हमेशा एक बात मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में कभी भी किसी चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजिए। जनता आपको चुन के इसलिए भेजी है कि आप जो भी ये मुद्दे हों उस पर बाकायदा इस देश की संसद में बहस होनी चाहिए, लोग अपने अपने विचार रखें, ये कहें कि हाँ इस पर हम विचार करेंगे। किसी चीज़ पर बहस किए बिना उसको रिजेक्ट करना, ये मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। कोई भी चीज़ हो उस पर आप जनता को दिखाई तो पड़े, अलग अलग विचार आएंगे, लोगों का अलग बहस होगी। और जैसा कि मैंने कहा, हर फील्ड का एक, देखिए हम लोग बात करते हैं लेकिन जो उसके विशेषज्ञ होते हैं वो कमेटी होती है, जैसे कि संविधान बनाने वाले तो विशेषज्ञों ने ही मिल बैठ करके बनाया, एक ड्राफ्ट बने जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो, चर्चा करके देखा जाए
जी,
और अगर सहमति बनती है तो वो जनता के बीच जाए
जी। चलिए
इस पर डिबेट हो।
एक जल्दी से दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, हमारे श्रोता जी, अपना नाम बताएं और बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें।
हेलो, मैं पांचूरा में आजाद चंदौली मुगलसराय से बोल रहा हूँ
जी। क्या कहना है आपका
इसमें? पहला, जो सरकार जो अपना पक्ष रखी है कि समय की बचत होगा और जो धन की बचत होगी, तो सबसे पहले जो काला धन चुनाव में प्रयोग होता है इस पर सरकार अंकुश लगाए। ये तो 2% चुनाव आयोग खर्च करता है और बाकी 98% तो काला धन ही खर्च होता है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है हमारे साथ जी, बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखें।
नमस्कार
जी।
नमस्कार जी, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा
जी। बसंती लाल जी,
जैसे हम किसान है या कोई भी मजदूर रह रही हो तो बेस नहीं होगा तो जैसे प्रधानमंत्री जी या कोई भी संसद में हमारी बात कौन रखेगा? अगर बेस होना चाहिए और समय की बचत तो देख रहे तो इनमें मतलब समय की बचत भी हो सकती है, पर ऐसा होना चाहिए कि बेस तो होना ही चाहिए
जी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए। रामकृपाल जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि इसके साथ साथ जैसा कि और श्रोताओं ने भी कहा कि और भी जो सुधार हैं जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर वो किए जाने की जरूरत है।
देखिए बिल्कुल सही है कि जैसे अभी ब्लैक मनी का मामला है, तमाम तरह की चीज़ों का मामला है, ये भी है दल बदल का मामला है, सरकार ने जबरदस्ती गिराने का मामला है, ये सारे बिंदुओं को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव सुधार समय की आवश्यकता है, जिसमें एक बिंदु भी यह शामिल किया जाना चाहिए कि क्या एक साथ चुनाव संभव है कि नहीं। इसके अलावा पूरी की पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव सुधार पर एक बहस हो और कानून बने
जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। उन श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे जिन्हें कम समय होने के कारण हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही, अगले शनिवार को नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। बीबीसी की सभा में इतना ही, आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने, सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें, नमस्कार।